अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे, और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, और मरते दम तक अल्लाह ताला हमें ईमान पर सलामत रखे और ईमान पर ही हमारा खात्मा हो। आमीन। जी, तो जैसे कि अकीदा में हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, आपको याद होगा कि इंसान शरीयत पर अमल करता है, और ये कुरान और सुन्नत से साबित है शरीयत पर अमल करना। और जो भी हमारे ईमान के अरकान बताए गए हैं, तो ईमान के अरकान में जो हमने आखिरी रुकन पढ़ा था वो था तकदीर पर ईमान लाना। और तकदीर पर ईमान लाना ये इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि उसी पर हमारी ज़िंदगी का दारोमदार है। क्योंकि इस ज़िंदगी में हमारे साथ बहुत सारे हादसे होते रहते हैं, और वो हादसात का दरअसल तकदीर से ही ताल्लुक है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि हम अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएं और कुछ कोशिश और जद्दोजहद ना करें। कि जैसे इंसान की दरअसल ख्वाहिश होती है, वैसे ही उसकी जद्दोजहद भी होती है। फिर तकदीर का मामला पढ़ा था, खैर और शर का मामला पढ़ा था, और ये अल्लाह ताला की तरफ से तो खैर ही होती है, हम इंसान बाज़ औक़ात उसको समझ नहीं पाते हैं। आज इंशाअल्लाह हम लोग उस टॉपिक से हटकर अल्लाह ताला की सिफात पढ़ेंगे। ये अल्लाह ताला की सिफात पर हमारा ईमान कैसे होना चाहिए उसको हम देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक फ़िरका था जिन लोगों ने तकदीर का इनकार किया, और कुछ लोगों ने अल्लाह ताला की सिफात का इनकार कर दिया। तो आज हम देखेंगे कि अल्लाह ताला की सिफात पर ईमान लाना कितना ज़रूरी है और कैसे ईमान लाया जाए। आइए हम शुरू करते हैं। जिन लोगों के पास अकीदे वासिती या किताब मौजूद है, उसका पेज नंबर 53 का लास्ट पार्ट वहाँ से शुरू होगा, शरह अकीदे वासितिया। और ये किताब अवेलेबल भी है अब यहाँ फहमी कुरान इंस्टीट्यूट पर अकोला में। जिसको मंगवाना हो वो इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं मंगवा सकते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़ं वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अब जैसे कि हो सकता है बहुत सारे लोग ये सोचते हों कि भला भाई अकीदा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, इतना टफ सब्जेक्ट। हालांकि टफ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर समझ में आने लगे तो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतनी डीप में जाने की क्या ज़रूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें ईमान तो है और ये तो है वो तो है। इस तरह की बातें भी हो सकता है सुनने को मिले आपको। अब देखिए, जब सहाबे कराम रदियल्लाहु अन्हुम के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से वही आई और उन्होंने वही को सुना, तो उस पर एज इट इज़ ईमान ले आए। उन्होंने कोई कील व काल नहीं किया, कोई हुज्जतबाजी नहीं की। वो लोग सादा लोग थे, उनके ज़माने में कोई बहस व मुबाहसे और इस तरह के मुनाजरेबाजियाँ ये सब नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, और बहुत ज़्यादा दुनिया के झमेलों में, दुनिया के जो टेम्पटेशन थे उसमें वो इन्वॉल्व नहीं हुए थे। बहुत ही सादा लह लोग थे, सीधे सादे लोग थे, बात को समझने वाले लोग थे, और अमल से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों पर ज़्यादा गौर फिक्र करते और उस पर ही ज़्यादा तवज्जो देते थे। लेकिन जैसे जैसे इस्लाम दूर दराज के इलाकों में फैलता गया और मुख्तलिफ मकतबे फ़िक्र के और मुख्तलिफ मज़ाहिब के और मुख्तलिफ अदियान को मानने वाले लोगों ने इसको जब कबूल किया, तो कुछ लोग अपने साथ अपने पुराने दीन के रस्म रिवाज, सोच, फ़लसफ़ियात और बहुत सारी चीज़ें लेकर आए। जैसे आपको मालूम होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम जब अपने हवारियों के साथ कहीं चले गए थे और उनके ख़िलाफ़ वहाँ पर कार्रवाई की जाने लगी थी, बनी इसराइल ने मिलकर उनके ख़िलाफ़ साजिश की और बादशाह के पास उनकी शिकायत कर दी थी और उनके ख़िलाफ़ बिलावजह के इल्ज़ाम लगाए, तो वो अपने हवारियों के साथ कहीं चले गए थे, और फिर वहीं से अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया आसमानों पर। उसके बाद जो उनके हवारी थे, जब वो मुख्तलिफ इलाकों में फैले और असल जो तालीमात फैलाई उनकी ईसा अलैहिस्सलाम की, उनके हवारियों ने फैलाई, जो कि सिर्फ 11 या 12 तैदाद में थे। तो अब देखिए अल्लाह ताला ने कितनी उनको तरक्की दी। लेकिन वो लोग जब इन्हें, ये जो बाद में जो क्रिश्चियंस हुए, पहले जो मुसलमान थे, जो ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे वो मुसलमान थे, उनका नाम मुस्लिम ही था। तब ये मुख्तलिफ इलाकों में फैले, और जब वो यूनान गए और यूनान का जो बादशाह था उसने इस्लाम कबूल कर लिया और अपनी रियाया समेत वो मुसलमान हो गया। लेकिन जो यूनान में पहले से जो कदीम मुजस्समे बने हुए थे, आपको मालूम है यूनान मुजस्समों के लिए बहुत मशहूर है, अभी भी मशहूर है ना, साइप्रस यूनानी मुजस्समे अभी भी मशहूर है, अपोलो जिसका बहुत सुनते हैं हम के वहाँ के जितने जो देवता थे उनके, वो इतनी खूबसूरत उसके उनके मुजस्समे बनाते थे और उनकी नाक बहुत खड़ी होती थी। अभी भी आज बहुत से लोग कहते हैं ना कि अपोलो की तरह का जैसा मुजस्समा था वैसे ही नाक है, सुतवा नाक, खड़ी नाक, इस तरह से मिसालें भी देते हैं लोग, वल्लाहु आलम। बहरहाल तो यूनान मुजस्समों के लिए बहुत मशहूर था, तो इसीलिए जब ये इस्लाम यानी ईसाइत जिसका दूसरा नाम था जब यूनान में आई, तो वहां पर उन्होंने इस्लाम को उस पुराने दीन के साथ खल्त मल्त कर दिया, मिक्स कर दिया, मिला दिया और एक नया वर्जन बना दिया उन्होंने इस्लाम का, कि ठीक है ये भी और वो भी, और फिर अकीदे तसलीस की इजाद हुई और फिर उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह मुजस्समे बना लिए, मरियम अलैहिस्सलाम को और ईसा अलैहिस्सलाम को, वहीं से मुजस्समों की शुरुआत हुई। और अभी भी वहां पर बहुत मशहूर और खूबसूरत मुजस्समे बने हुए हैं अगर आप देखेंगे जगह जगह। तो इसी तरह से जब इस्लाम फैला और इस्लाम अरब इलाकों से निकलकर अजम की तरफ फैलता चला गया मुख्तलिफ इलाकों में, तो मुख्तलिफ किस्म के लोग, मुख्तलिफ फिलासफर जो थे, या एक कह सकते हैं आप उसको थिंक टैंक तबका जो होता है, यानी बहुत इंटेलेक्चुअल तबका जो होता है, हर मौसम में एक तबका ऐसा ज़रूर होता है या कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो बहुत ज़्यादा इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके पास सलाहियतें होती हैं, सोच उनकी उनकी थ्योरी अलग होती है, ये कुछ उन अलग अलग लोग होते हैं, अल्लाह ताला ने सबका जहन मुख्तलिफ बनाया है। तो जब ये इस्लाम मुख्तलिफ इलाकों में फैला तो उस वजह से वो लोग अपनी वो पुरानी सोच भी साथ में लेकर आए और वही फ़िरका मुअतज़ली फ़िरका कहलाया। वो लोग इस बात के कायल थे कि अक़ल सुपेरियर है और जो रूह है इंसान की या जो वही है वही अक़ल के ताबे है, अंडर है। अगर हम ऐसा सोच लें कि अक़ल वही के ताबे है तो सारा बिगाड़ वहीं से शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखिए इंसान की अक़ल तो बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही मुख्तसर है, हमारी अक़ल इदराक नहीं कर सकती बहुत सारी चीज़ों का, आसमान पर क्या है हम नहीं जानते। हमारी अक़ल जैसे पहले आपने देखा होगा कि दुनिया में पहले जब रिसर्च हुई, जब शुरू शुरू में लोग जितने भी जो साइंसदान थे और वो लोग सोच रहे थे कि अच्छा ज़मीन गोल है, फ्लैट है या ओवल शेप में है, तो आपने देखा होगा बहुत ही डिफरेंट थ्योरीज सामने आई, बहुत ही अभी अभी की बात है, अभी अभी का मतलब ये ज्यादा से ज्यादा 100 साल हुए होंगे, जबकि बात है कि जब जमीन के बारे में सही उनको अंदाजा हुआ 100-200 साल हुए होंगे, वरना उससे पहले डिफरेंट थ्योरीज सामने आई कि जमीन फ्लैट है, कुछ का कहना था कि जमीन ओवल शेप में है, एक सिरे से जाकर दूसरे सिरे पर खत्म हो जाता है, यहीं से पैदल चल के जाओ तो या जैसे भी जाओ तो। बहरहाल तो आप देखें कि इंसान की अकल तो इतना भी इदराक नहीं कर सकी कि जमीन कैसी है, तो आप सोचिए कि इंसान की अकल कितनी लिमिटेड, कितनी मामूली सी समझ रखती है, जबकि वही तो अल्लाह ताला की तरफ से आती है और वही ये वो सोर्स है दुनिया में अल्लाह ताला के बारे में और इतनी कायनात के बारे में जानने का जो सबसे बेस्ट और ऑथेंटिक जरिया जो हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ वही इलाही है ना, जो अम्बिया पर आती रही और जिसे जिब्रील अमीन लेकर आए। तो सही जो सोचती सहाबा इकराम ने जब सुना रसूलुल्लाह से कि ठीक है मेराज का वाक़ा हुआ, उन्होंने एज इट इज उस पर यकीन कर लिया। अब देखिए अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक का लक़ब क्यों मिला था, आप बता सकते हैं किस वजह से मिला था, क्या रीज़न था कि उनको सिद्दीक का लक़ब मिला, कोई बताएगा, लिखकर मैसेज करिए, क्यों मिला था उनको सिद्दीक का लक़ब, क्या वाक़ा पेश आया था, अनयूजुअल वाक़ा पेश आया था जो हमारी अक़ल हमारे फहम और इदराक से बिल्कुल मावेरा है। जी किस बात पर सच बोला था उन्होंने, सिद्दीक का लक़ब मिला था, तो सच क्या बोला था उन्होंने, सच ये बोला था ना कि जी मेराज का जो वाक़ा पेश आया था, जो आपको आसमानों की सैर कराई गई थी, तो सारे लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, अबू जहल तो हंसी से लोट पोट हो गया काबतुल्ला के सामने और इतना मजाक उड़ाने लगा और मजाक बनाने लगा। लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि उनको मेराज हुई है यानी उनको आसमानों पर ले जाया गया है, तो मैं बिल्कुल यकीन कर लूंगा, क्योंकि जब मैं इस बात पर यकीन करता हूँ कि रोजाना उनके पास आसमान से वही आती है, तो एक दिन इन्हें आसमानों पर ले जाया गया तो कौन सी बड़ी बात है। सुभान अल्लाह, देखिए उनकी सोच। तो उस वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था कि आप सिद्दीक हैं, ये आपने सच कहा। तो ये जो अब अगर आप आज अगर आप अकल परस्त तबका देखेंगे, जो मुतजिला फ़िरका या उसकी कोई शाखें ब्रांचेज अगर आज मौजूद है तो वो मुनकरीन हदीस में मौजूद है। तो आज भी बहुत सारे लोग जो बहुत बेहतरीन मुफस्सरीन हैं, कुरान की बेहतरीन तफसीर करने वाले, जो बहुत बेहतरीन स्कॉलर्स हैं, लेकिन वो मेराज के वाक़े को नहीं मानते, उस पर ईमान ही नहीं लाते। आप सोचें कितनी बड़ी, देखा जाए तो एक तरह से बदनसीबी कह सकते हैं हम इसको, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बात बता दी कि वो गए थे आसमानों पर, तो आप तो सच बोलने वाले थे, आप तो खुद यानी अंबिया तो सच बोलने वाले होते हैं, और जब कुरान में भी इसका जिक्र मौजूद है तो हमारा उस पर ईमान लाना फर्ज बनता है, मेरा और आपका, हम सबका, हम मुसलमानों का। और इसीलिए मेराज के वाक़े पर ईमान लाना ईमान का एक हिस्सा है, वरना उसके मुसलमान होने पर शक किया जाएगा जो मेराज के वाक़े को नहीं मानता है। ठीक है, तो अब ये जो अक़ल परस्त लोग थे, जो मुतज़िला फ़िरका था, ये जो उसकी एक समझे ब्रांचेस जो चली आ रही थी जब से रसूलुल्लाह सल्लम की वफ़ात के बाद, जो ऐसे लोग पैदा हुए आसपास के इलाकों में, जो मंतकी सोच रखते थे, जो दलाइल से बात करना जानते थे, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपेरियर समझते थे, जो जो अक़ल को ज़्यादा बेहतर समझते थे वही के मुकाबले में, ऐसे लोग हमेशा से चलते आए हैं अभी तक रसूलुल्लाह के बाद से। रसूलुल्लाह के ज़माने में उस वक्त आसपास अरब में तो नहीं थे, क्योंकि सहाबे कराम की तो मजाल ही नहीं थी माशाल्लाह कि वो कोई चीज़ रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ कह सकें या आपसे आगे जा सकें। वो तो रसूलुल्लाह की हर बात पर आमन्ना व सदकना, समयना व अताना कहते थे। कभी उन्होंने किसी चीज़ की कोई लॉजिक पूछी नहीं, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दे दी, उस पर एज इट इज़ ईमान लाए, सुभान अल्लाह, कि बस उनका सर खम रहता था माशाल्लाह सहाबे कराम का। इसीलिए ईमान लाने के लिए मिसाल दी गई कि अगर तुम्हें ईमान लाना है तो ये सहाबा के जैसा ईमान लाओ, है ना। तो बात यह है कि ऐसे लोग फिर बाद में पैदा होते रहे जो मंतकी दलायल चाहते थे, जो चाहते थे कि हर चीज़ को एक दलील पर परखें, हर चीज़ की कोई लॉजिक होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने जिनों का इनकार किया, उन्होंने जादू का इनकार किया, उन्होंने फरिश्तों का इनकार किया कुछ लोगों ने तो, और कुछ लोगों ने तो मेराज का ही इनकार कर दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसलिए हदीस को भी नहीं माना लोगों ने, क्योंकि हदीस में मेराज का वाकया मिलता है, तो इसलिए वो लोग हदीस को भी नहीं मानते हैं। फिर वो कहते हैं हमको सिर्फ कुरान चाहिए। तो बहरहाल ऐसे ही कुछ लोग थे जिन लोगों ने फिर अल्लाह ताला की बहुत सारी सिफात का भी इनकार कर दिया। यानी आप देखें कि अक्ल उनको कहाँ लेकर गई, और अक्ल देखें, अक्ल बहुत चालाक और अय्यार भी होती है, और अक्ल बहुत लिमिटेड होती है इंसान की, वो इंसान को बहका भी सकती है, वो गुमराह भी कर सकती है, और उसको सही रास्ते से डाइवर्ट भी कर सकती है। तो अक्ल से जब इंसान सोचने लगता है तो फिर वो उसको ऐसे ही अजीब अजीब बातों पर उभारती रहती है। तो फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला की सिफात तो है ही नहीं, अगर हम अल्लाह ताला को सिफात से मौसूफ करते हैं तो वो तो इंसानों की तरह हो जाएगा, नाउज़ुबिल्लाह। तो उन्होंने बस अल्लाह ताला के वजूद को तो माना, लेकिन अल्लाह ताला के बाज़ ने वजूद का भी इनकार कर दिया, और बाज़ ने उसको बस यानी एक एक जो हमारा तखय्युल होता है बस वो बना दिया, कि यानी एक्चुअल कोई चीज़ है नहीं नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात, और बस एक इमेजिनेशन है या फिर उसकी कोई सिफात नहीं है। तो इसीलिए जिस ज़माने में इमाम इब्ने तहमिया रहमहुल्लाह अलैह थे, तो उस ज़माने में ऐसे फ़िरके तो बहुत ज़्यादा, ऐसे गुमराह फ़िरके बहुत ज़्यादा ही पैदा हो गए थे। और ये शुरुआत हुई थी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत का, जो आखिरी दौर था, वहाँ से कुछ लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन उनको उस वक्त इतना पनपने का मौका नहीं मिला। और फिर बाद में अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत या अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद, तो बस समझे वो फ़िरके अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में ही, और उसके बाद वो फ़िरकों को ऐसा गोया कि एक खुली आज़ादी मिल गई, क्योंकि जो अली रज़ियल्लाहु अन्हु का खिलाफत का दौर था वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे दौर था, शोरिश वाला दौर था। यानी उसमें अली रज़ियल्लाहु अन्हु को इतना मौका भी नहीं मिल सका कि वो सब तरफ यानी चौमुखी लड़ाई लड़ सकें, क्योंकि उनको बहुत सारे उस वक्त फितने दरपेश थे, तो वो सबके साथ हाने के मामला कर रहे थे। और माशाल्लाह अली रज़ियल्लाहु अन्हु चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे थे, तो वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे। इसीलिए उन्होंने कुछ लोगों को जो इस तरह के अकल परस्त लोग थे उनको बहुत सख्त सजाएं भी दी अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने, ताकि वो गुमराह होने से बच जाएं। खवारिज का फितना आप जानते होंगे, जिन लोगों ने भी फितना फितनों के दौर का पढ़ा होगा, तो खवारिज का फितना बहुत बड़ा था, उस फितने से उन्होंने निपटा माशाल्लाह, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसको निपटाया अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने। लेकिन उसके साथ साथ और इतने फिरके और इतने मुख्तलिफ अकीदे के लोग वहां पर उस वक्त पैदा हो गए थे कि उनको सबको एक साथ देखना बहुत बहुत मुश्किल था, और उसी दौरान उनकी शहादत भी हो गई। तो उसके बाद तो गोया समझो फितनों को या मोतजली फ़िरका या जो भी अकल परस्त लोग थे उनको तो समझो एक मौका हाथा गया, और जिसका जो दिल चाहा उसने फिर वैसी उसकी तशरीह शुरू कर दी। और नौजबिल्ला अल्लाह ताला के बारे में उन्होंने फिर वो बातें कहीं जो कि सख्त गुनाह की बात थी कहना। तो इसीलिए फिर इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह अलैहि ने, उससे पहले भी लोगों ने कहा था लिखा था, लेकिन एक्चुअली किताब आपको मालूम है कि बहुत मशहूर हुई थी, छोटा सा रिसाला था ये, वासितिया शहर से किसी ने लिखा था, वासितिया शहर में इब्ने तैमिया ने लिखा था जब उनको किसी ने सवाल लिखकर भेजा था, तो उन्होंने वहीं को ये जवाब लिखकर भेजा था इसका। तो उन्होंने फिर इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह अलैहि लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने जो अपने औसाफ बयान किए हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह ताला के औसाफ बयान किए हैं उस पर ईमान लाना ज़रूरी है और वो ईमान का हिस्सा है। जैसे कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने के बारे में ये बात भी आती है कि उस चीज़ पर ईमान लाया जाए जिसके साथ उसने अपनी किताब में अपनी ज़ात का वस्फ बयान किया है, यानी अल्लाह ताला की जो ज़ात है उसमें जो उसकी सिफात हैं, और अल्लाह ताला ने जो कुरान में बयान भी किए हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान किए, तो उस पर ईमान लाना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। व मिनल ईमान, तो यहाँ पर ये मिन जो है तबईज़ के लिए आया है, यानी इसलिए नहीं, ईमान सिर्फ एक चीज़ से नहीं बनता, ईमान बहुत सारी चीज़ों को मिलकर बनता है ना, यानी ईमान की कई शाखें हैं आपको मालूम होगा। तो बहुत सारे लोग आज दुनिया में आपने देखा होगा कि अल्लाह ताला को तो मानते हैं कि एक रब है, मानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की पूरी सिफात पर वो ईमान नहीं लाते। नौजबिल्ला जैसे यहूदियों का ही अकीदा हो गया था कि उन्होंने क्या सोचा था यहूदियों ने कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को पैदा किया और फिर क्या किया, किसी को याद है कुरान की बात कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को पैदा किया और फिर क्या किया, कौन है जो बताएगा जल्द अज जल्द यहूद का अकीदा क्या था? फास्ट टाइप करते रहिए आप ताकि फिर हम आगे बात को कंटिन्यू करें, आप लोग भी मेरा साथ देते जाएंगे तो मुझे समझ में आएंगे कि आपको बात समझ आ रही है। नहीं, हाथ नहीं उठाना है, आपको लिखकर जवाब देना है जी। यहूद कहते थे कि हाँ अल्लाह ताला ने आराम किया, नाउज़ुबिल्ला, क्या भले अल्लाह ताला को आराम की ज़रूरत है? नहीं, इस कायनात को पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है अल्लाह के लिए, अल्लाह सुबहाना ताला के लिए, अल्लाह ताला की तो बस कुन कहने की देर है और फयकुन सुबहान अल्लाह वो हो जाती है। तो यहूद ने ये अकीदा बना लिया कि अल्लाह ताला ने 6 दिनों में ज़मीन और आसमान पैदा किए और 7वें दिन आराम किया, इसलिए वो हफ्ते को छुट्टी देते हैं, सैटरडे, ठीक है। नाउज़ बिल्लाह, कितना बुरा अकीदा है आप देखें। तो अब देखिए कि अब ये जो मुसलमान कौम थी जब उनके अकीदे में बिगाड़ा गया, तो वो लोग जो कि सिर्फ नाम के लिए इस्लाम लाए थे तो उनका फिर क्या अकीदा होगा, कितना बिगाड़ होगा उसमें। तो ऐसी बहुत सारे आज भी फिरके हैं जो अल्लाह के वजूद को तो मानते हैं, या कहते क्या ठीक है अल्लाह तआला ने कायनात बनाई, लेकिन वो कहते कि उसके बाद अब अल्लाह तआला का कोई नाउज़ बिल्लाह कोई अमल दखल नहीं है, अल्लाह तआला ने कायनात बना के छोड़ दी, अब इंसान शुतुर बेमुहार की तरह आज़ाद है जो चाहे करे, नाउज़ बिल्लाह। अब देखें फिर ये अकीदा इंसान के अंदर कितना बिगाड़ लाता है। और आप देखें कि वो जो एक जुमला हम सुनते हैं ना, आप लोगों ने बारहा सुना होगा कि अल्लाह को मानना एक अलग चीज़ है और अल्लाह की मानना ये एक बहुत ही डिफरेंट बात है ना, कि मोमिन क्या करता है, अल्लाह की मानता है। और दुनिया में बहुत सारे मुख्तलिफ अकीदा रखने वाले लोग या मुख्तलिफ मजाहब के लोग, इवन नॉन मुस्लिम्स में से भी, वो अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। तो अल्लाह ताला पर ईमान लाना, और फिर उसमें से ये भी है कि उस पर ईमान लाने के साथ साथ तो उसकी सिफात पर ईमान लाना ये भी ज़रूरी है जी। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने के साथ साथ तो उसकी सिफात पर ईमान लाना भी बे इंतहा ज़रूरी है। तो यहाँ पर वही बताना चाह रहे हैं राइटर जो मुअल्लफ है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि ईमान बिल्लाह यानी अल्लाह पर ईमान 4 उमूर पर मुश्तमिल है, ठीक है। 4 चीज़ें वो क्या है वो देख लीजिए, आप गौर से सुनिएगा, कि अल्लाह के वजूद पर ईमान लाना, अल्लाह ताला की रुबूबियत और उलूहियत पर ईमान लाना कि वही रब है, वही पालने वाला है, वही सब कुछ हमें प्रोवाइड करने वाला है, और वो इलाह है, वो अकेला है, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, ठीक है। और तीसरा है उसके मुनफरिद होने पर ईमान लाना कि वो ऐसा यकता है उस जैसा कोई नहीं, ठीक है, कि अल्लाह सुबहाना व तआला का ना कोई हमसर है ना उसने किसी को जना है, ना वो किसी से पैदा हुआ है। जैसे हम सूरह इखलास पढ़ते हैं, वो वाली बात कि वो मुनफरिद है, उसके जैसा भी कोई नहीं है, उसके मिसाल की मानिन भी कोई चीज़ नहीं है। कुरान में हम पढ़ते हैं कि लैसा कमिस्ली शै, कि उसके मिसाल के मानिन भी कोई चीज़ नहीं है। सुभान अल्लाह, यानी ये एक आयत ही हमारे लिए इतनी इतना बड़ा मानी रखती है कि मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लाने के लिए और उसको उसकी वहदानियत पर ईमान लाने के लिए ये एक आयत भी हमारे लिए काफ़ी है कि उसकी मिसाल के मानिन भी कोई चीज़ नहीं। तो उसके मुनफरिद होने पर भी हमको ईमान लाना है, और उसके अस्माओ सिफात पर ईमान लाना भी ज़रूरी है कि उसके कुछ स्पेशल नाम हैं और उसकी कुछ सिफात भी हैं। तो इससे फिर क्या पता चलता है कि ईमान बिल्लाह का ये हिस्सा है कि ईमान अगर लाया जाए तो ये चारों चीज़ों पर लाया जाए, और अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के साथ जो सिफात बयान की हैं, अपनी जो वस्फ बयान किया है अपना, उस पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। अगर हम उसके औसाफ पर, उसके वस्फ पर, उसके सिफात पर ईमान नहीं लाएंगे तो मतलब नौज़ बिल्लाह हमने अल्लाह ताला की बहुत सारी जो चीज़ें हैं, यानी जो उसकी ख़ास सिफात हैं, उसका हमने इनकार किया। तो सिफत क्या है अल्लाह ताला की? यानी जब भी हम अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे तो हमको उसके सिफत के साथ उसको मानना पड़ेगा। उसके नाम हैं, जैसे कि कुरान से भी पता चलता है और हदीस से भी पता चलता है कि अल्लाह ताला की 99 नेमें हैं ना। और इसका इनकार सिर्फ वही लोग करते हैं जो बहुत ही आगे निकल गए थे गुमराही में, जो जिसको जिनको गाली किस्म के लोग कहते हैं, जैसे कि जहमिया और मुतज़िला फ़िरका। इंशाल्लाह आगे जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको, यानी इस किताब में भी है, मैं जहमिया फ़िरके के बारे में आपको बताऊंगी। और ये मुतज़िला ही की शाख थी जहमिया भी। असल में मुतज़िला क्या करते हैं, वो अस्मा को तो मानते हैं लेकिन सिफात का इनकार कर देते हैं, ये अख्तलाफ करते हैं। कुछ लोग हैं, एक अशायरी फ़िरका निकला था, लेकिन बाद में उन्होंने, जो अशायरी फ़िरके के जो मेन लीडर थे, उन्होंने तौबा कर ली थी और वापस वो सही रास्ते पर आ गए थे। तो कुछ लोग क्या हैं, अस्मा को तो मानते हैं लेकिन सिफात में वो कुछ इख्तलाफ रखते हैं अल्लाह ताला की। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला की सिफात पर भी एज इट इज़ ईमान लाना ज़रूरी है, उसके अस्मा पर भी एज इट इज़ ईमान लाना ज़रूरी है, और उन सिफात से उसको मौसूफ करना है जिन सिफात का जिक्र अल्लाह ताला ने किया है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, खबर दी है। और फी किताब ही से मुराद क्या है कि अल्लाह ताला ने जो कुरान में अपनी किताब में बयान किए हैं। और कुरान को किताब के नाम से क्यों याद किया जाता है, क्योंकि वो लौह महफूज में लिखा हुआ है। यानी कुरान दरअसल, उसको किताब भी कहा गया, अल किताब है ना, जालिकल किताबु ला रैब फीह है ना, हम पढ़ते हैं, तो ये कुरान की किताब है। तो किताब का नाम क्यों दिया गया कुरान को, क्योंकि वो लौहे महफूज में लिखा हुआ है, उन सहीफों में लिखा हुआ है जो बुजुर्ग फरिश्ते लिखने वाले हैं, उनके हाथों में है, उनके हाथों से लिखा गया है, यानी या उनके हाथों में है। और फिर अल्लाह ताला ने उसको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलब मुबारक पर नाजिल किया, या फिर लोग उसको मुसहफ में लिखा करते थे, यानी जब वो नाजिल हुआ तो उसको लिख कर एक मुसहफ में महफूज कर लिया गया। तो किताब के मानी क्या है, लिखा हुआ, अल्लाह ताला ने उसे अपनी तरफ मंसूब किया है क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। इन्हें कुरान को अल्लाह ताला ने अपनी जात की तरफ मंसूब किया है, निस्बत दी है, क्यों? क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। तो कुरान अल्लाह का कलाम है, इस बात पर ईमान लाना ज़रूरी है। अल्लाह अज़्ज़ोजल ने हकीकतन उसके साथ कलाम फरमाया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखें, क्योंकि जब आप उलूमुल कुरान पढ़ेंगे, या आप अगर बाहर गैर मुस्लिमों की किताबें पढ़ेंगे और ये उनकी रिसर्च आप पढ़ेंगे, तो वो कहते हैं कि कुरान, अगर आप ये कहते थे कि नाऊज़ बिल्लाह, अच्छा इसको तो जिब्रील अमीन लेकर आए थे और जिब्रील अमीन का कलाम है ये मुस्तशरिकीन का कहना है। वो क्या कहते हैं कि अगर आप अल्लाह ताला की सिफत कलाम को नहीं मानते हैं, कि नाऊज़ बिल्लाह, क्योंकि कुछ लोगों ने क्या कहा कि अल्लाह ताला की कोई सिफत ही नहीं है, तो कलाम करना भी तो एक सिफत है ना। जब अल्लाह ताला ने हम इंसानों को बोलने की सलाहियत दी, तो क्या अल्लाह ताला नहीं कलाम करेगा, आप बताइए, सुभान अल्लाह। लेकिन हम इंसानों के जैसा उसको नहीं बता सकते कि हमारे जैसा ही कलाम करना अल्लाह ताला का कलाम करना है। तो कुरान भी ये अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला ने ये कलाम किया और जिब्रील अमीन ने उसको सुना, और फिर जिब्रील अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे मुबारक पर उसको उतारा, ठीक है, उनको दिया। तो अल्लाह ताला ने ये कलाम किया कुरान को, ऐसा नहीं हुआ कि जिब्रील अमीन ने इसको किताब में लिख कर देखा और खुद पढ़कर आ गए और रसूलुल्लाह के कलब मुबारक पर नाजिल कर दिए, नहीं। अगर हम ऐसा कहते कि जिब्रील अमीन ने खुद इसको पढ़कर आकर नाजिल कर दिया, तो ये तो फिर क्या हो जाएगा कि तो जिब्रील अमीन का कलाम हो जाएगा, और यही तो मुस्तशरिकीन कहना चाहते हैं। तो नहीं, फिर तो हम अल्लाह तआला की सिफत कलाम का समझे इनकार कर रहे हैं, नाउज़ बिल्ला। तो अल्लाह तआला ने कलाम किया, अल्लाह तआला ने कुरान में खुद फरमाया कि हुवा कलाम अल्लाह, ये अल्लाह का कलाम है कुरान। लेकिन किताब इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लिखा हुआ भी है लोहे महफूज में। बात आई समझ में आपकी? और ये जो मुस्तशरिकीन की जो टर्म मैंने अभी आप लोगों के सामने जिक्र की, एक्चुअली ये तबका उस वक्त पैदा हुआ था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जितनी भी गैर मुस्लिम अदियान थे, मुसलमानों के अलावा जो दीन थे, जो उस वक्त मजाहब थे, समझे, दीन तो हम उसको नहीं कह सकते लेकिन मजाहब, तो उन लोगों सबकी यलगार इस्लाम पर हुई, क्योंकि वो लोगों से ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि एक एक दीन आया इस्लाम और इतनी जल्दी वो सब तरफ छा गया। सिर्फ अरब ही नहीं बल्कि अजम के इलाकों पर भी इस्लाम फैल गया, वहां पर भी इस्लाम की तालीम आम हो गई, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो उन लोगों ने इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया, एक जंग शुरू की, सर्द जंग, लिख कर कह कर वो लोग इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहे। तो उस वक्त कुछ लोग ऐसे पैदा हुए जो गैर मुस्लिमों के स्कॉलर्स थे बड़े बड़े, और जो रिसर्चर्स थे, यानी बाद में जो यूरोपियन कंट्रीज बनी, और उसमें जो अगर आप लाइब्रेरीज में जाएंगे तो आपको दिखेगा, आपको पता चलेगा कि वहाँ बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं। तो मुसलमानों से भी पहले दरअसल गैर मुस्लिमों ने इस्लाम पर किताबें लिखी, और उसमें 50% हकीकत लिखी, लेकिन 50% उन्होंने उसमें तासुब की वजह से ऐसे चीज़ें मिला दी, शामिल कर दी, जिसकी वजह से इंसान शकूक व शुबहात में पड़ जाता है, उसका ईमान डामाडोल हो जाता है। और चूंकि उन्होंने लिखने का काम पहले से शुरू कर दिया था, तो मुसलमान स्कॉलर से पहले उनकी किताबें सामने आ गई गैर मुस्लिमों की। अब अगर आप आज रिसर्च करने जाएंगे तो आपको बहुत सारे गैर मुस्लिम स्कॉलर्स की किताबों की तरफ रुजू करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पहले लिखी थी किताबें। तो जहां पर 50% बातें उन्होंने सही लिखी इस्लाम की, 50% बातों में उन्होंने मिलावट भी कर दी तासुब की बिना पर। जैसे गिबन का नाम आपने सुना होगा, स्प्रिंग गोल्ड जहर है, स्प्रिंगर है, ये बहुत मशहूर मुस्तशरकीन है असल में। खैर, गिबन तो एक हिस्टोरियन भी था, लेकिन ये जो स्प्रिंगर और गोल्ड जहर, ये जिनके नाम मैंने अभी आपके सामने गिनवाए हैं, ये मुस्तशरकीन कहलाते हैं। मुस्तशरकीन का मतलब होता है वो नॉन मुस्लिम स्कॉलर जो रिसर्च करके किताब लिखे किसी खास मौजू पर, किसी खास टॉपिक पर, वो मुस्तशरकीन कहलाते हैं। देखिए, मुशरकीन नहीं है, मुस्तशरकीन। तो अब देखिए, ऐसे आम राइटर नहीं होते, ये हर एक को मुस्तशरिक नहीं कह सकते। अब हर राइटर जो आज नॉन मुस्लिम राइटर किताब लिखते हैं तो उसको आप मुस्तशरिक नहीं कह सकते। वो नॉन मुस्लिम्स राइटर्स या स्कॉलर्स जो रिसर्च करके इस्लाम के बारे में किताब लिखता है, और इसमें 50% हो सकता है सही भी हो, लेकिन 50% वो अपनी तरफ से बात उसमें मिला देता है, वो मुस्तशरिकीन कहलाते हैं। ठीक है, बात आई समझ में? मैं आपसे सवाल पूछूं कि मुस्तशरिकीन कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? खुद भी जवाब नहीं देंगे। नॉन मुस्लिम राइटर जो रिसर्च करके इस्लाम के बारे में कोई बात लिखे। ठीक है जी, जज़ाकअल्लाह खैर, वेरी गुड। तो अब उन लोगों ने क्या किया, जो जहमिया फ़िरका था और मुतज़िला फ़िरका था, उन लोगों ने अल्लाह ताला की सिफात का इनकार कर दिया, और अल्लाह ताला की सिफात यानी कि अल्लाह ताला कलाम करता है, अल्लाह ताला अलबसीर है, अलखबीर है, असमी है, तो ऐसी बहुत सारी सिफात का उन लोगों ने इनकार कर दिया। तो इसीलिए ईमान बिल्लाह के ताल्लुक से ये बात भी लाजिम व मलजूम है कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ के साथ, जिस सिफत के साथ अपने आप को मौसूफ किया है, उस पर भी ईमान लाया जाए। क्योंकि ईमान बिल्ला दरअसल अल्लाह तआला के अस्मा और सिफात पर ईमान लाने ही की बात है, या उसी की जमानत है, या उसी की एक कड़ी है, समझे। क्योंकि अल्लाह तआला की जो जात है, अल्लाह तआला की जात को कई अस्मा से, कई नामों से मौसूम किया जाता है, और कई उसके औसाफ बयान हुए हैं, और औसाफ में ये भी है कि अल्लाह तआला की जात भी है, उसका वजूद भी है, और उसके अस्माओ सिफात भी हैं। लेकिन हम इंसानी जहन, बाज़ औक़ात हमारा जहन मुंतशिर होता है, क्योंकि हमारी इंसानी, हमारा जो इंसानी जहन है, हमारी सोच है, जो हमारी अक़ल है, वो बहुत लिमिटेड है असल में। तो हम अपने जहन के हिसाब से किसी भी चीज़ को बहुत महदूद कर लेते हैं। नाउज़ बिल्लाह, हम सोचते हैं कि अच्छा क्या भला अल्लाह ताला के हमारे जैसे हो सकते हैं, भला हाथ या इंसानों के जैसे तो नहीं हो सकते, वो तो अल्लाह ताला है। तो ऐसा हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। हम अल्लाह ताला ने कुरान में अपने हाथों का जिक्र किया है, तो अल्लाह ताला के हाथ हैं, लेकिन वो कैसे हैं वो हम नहीं बता सकते, ये गैब से है। तो تو اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی ہے اپنے بارے میں کہ اس کے ہاتھ ہیں، تو ہم کو اس پر ایز اٹ از ایمان لانا ہے، ہم کو اس کو تصور میں نہیں لانا کہ اچھا ہمارے جیسے ہاتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے. تو جو انسانی دماغ ہے، جو انسانی سوچ ہے، اس کی جو لمیٹڈ ہے اصل میں سوچ، تو وہ ہم اپنے ذہن میں مفروضہ بنا لیتے ہیں نا، ایک امیجنیشن ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، ایک تخیل ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. تو جو ہمارا تخیل ہے، ایکچوئل جو چیزیں ویسے تو نہیں ہو سکتا نا. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا فلاں فلاں، جس کی ہم کبھی آواز سنتے ہیں، آواز سننے سے لگتا ہے کہ اچھا یہ ایسے اور ایسے ہوں گے، ان کا چہرہ ایسا ہوگا، ان کی جسامت ایسی ہوگی، لیکن جب ہم ملاقات کرتے تو پتہ چلتا کہ اچھا رہی تو ان کی بات کرنے سے تو بالکل ہم نے امیجنیشن میں جو سوچا تھا اپنے، اس سے بالکل مختلف نظر آ رہے ہیں نا، ایسا ہوتا ہے نا. تو جو انسان کا امیجنیشن ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے، لیکن جب اس کو دیکھتا ہے، جب وہ مشاہدہ کرتا ہے، تو پھر الگ ہوتا ہے. تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ اس طرح سے کن کہہ دے اور فیکون سب ہو جاتا ہے، تو ان لوگوں نے ہر صفت سے اس کو خارج کر دیا اللہ تعالیٰ کو، اور سوچا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، بس ایک امیجنیشن ہمارا تخیل ہے بس. یا پھر کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو تو مانا لیکن اس کے صفات کو نہ مانا. تو انسانی ذہن کسی بھی چیز کو فرض کر سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے جو انسانی ذہن سوچ رہا ہو، جو ہماری سوچ ہے، وہ بہت لمیٹڈ ہے اور وہ ویسے ویسے نہ ہو جیسے کہ بتایا گیا ہو. اور جو چیز ہم سوچتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہی چیز کا ہونا ضروری ہو. ہم یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، سبحان اللہ. لیکن ہماری سوچ بہت مختلف ہے، ہماری سوچ بہت لمیٹڈ ہے. تو ہم جو سوچتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ چیز ویسی ہی ہو، کیونکہ ہماری عقل بہت لمیٹڈ ہے، سوچ ہماری بہت چھوٹی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حصہ ہے. اور اس کے تعلق سے جس پر سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایسے ایمان لایا جائے جیسے کہ اس نے خود اپنی ذات کا وصف بیان کیا ہے. اور یہ بات سب مانتے ہیں، اکثر لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود تو ہے، لیکن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیتے ہیں. تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ امور غیبیہ میں سے ہے، یعنی وہ غیب کے علم میں سے ہیں. اور اس میں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، میری اور آپ کی، کہ ان پر اسی طرح ایمان لایا جائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے. یعنی جو نصوص ہے، نصوص کہتے ہیں نون سواد واو سواد، نصوص، نص کہتے ہیں کوئی بھی چیز کی اوریجن، یعنی وہ چیز جہاں سے، جو وہ سورس جہاں سے پھوٹا ہے، نکلا ہے، وہ چشمہ جہاں سے پھوٹا ہے، ایکچوئل اس کی جو بیس ہے، جو بنیاد ہے وہ. تو قرآن اور سنت یہ دو ہمارے نصوص ہیں. قرآن سے کوئی بات ثابت ہوگی یا صحیح حدیث سے کوئی بات ثابت ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو جو نصوص سے بات ثابت ہے اسی کو ہمیں ماننا ہے، اس سے ہٹ کر ہمیں کسی اور طرف رجوع نہیں کرنا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صرف انہی چیزوں کے ساتھ موصوف کیا جا سکتا ہے جن کے ساتھ خود اس نے اپنی ذات کو اپنی کتاب میں موصوف کیا ہو، یعنی اپنی صفات بتائی ہوں کتاب میں، یا پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو. اور قرآن اور حدیث سے ہمیں ہرگز تجاوز، یعنی آگے نہیں بڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کا اوپینین ہے. جیسے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کرنے چاہیے جن کے ساتھ خود اس نے اپنی کتاب میں اپنے آپ کو موصوف کیا ہے، یا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کروایا ہے. آپ کو وہ دعا یاد ہوگی نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر اکثر پڑھا کرتے تھے. کون سی دعا ہے جو سجدے میں بھی پڑھی جاتی ہے؟ کہ اے اللہ تعالیٰ، اس کا ترجمہ ہے، اب یہ زبان پر نہیں آ رہی ہے عربی میں، حالانکہ روز ہی پڑھتے ہیں وہ، کہ اے اللہ تعالیٰ تیری تعریف تو ویسی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف بیان فرمائی ہے، ہماری زبان اس بات سے عاجز اور قاصر ہے کہ ہم تیری تعریف بیان کر سکیں، کہ ہم تو شمار ہی نہیں کر سکتے، لا احصیہ، کہ ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، تیری تعریف ویسی ہی ہے، تیری ثنا ویسی ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی ثنا کی ہے، تعریف کی ہے. ہماری انسان، ہماری سوچ، ہماری زبان اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتی، ہماری سوچ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی کہ ہم تیری تعریف بیان کر سکیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ آراف آیت نمبر 33 میں، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. سورہ آراف آیت نمبر 33، کتاب میں تھوڑی سی اس کی مسٹیک ہوئی ہے، بغیر الحق ہے وہ، تو وہاں با پر فتح آ گیا ہے، تو اس کو کریکشن کر لے جن کے پاس کتاب ہوگی، تو بغیر الحق ہے وہ. कि कह दो कि हराम किया है मेरे रब ने बेहयाई के कामों को, उनमें से जो जाहिर हो और जो पोशीदा हो, और गुनाह को और नाहक ज्यादती को, और ये कि तुम अल्लाह के साथ शिर्क करो जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी है, और ये कि तुम अल्लाह के बारे में वो बात कहो जिसे तुम नहीं जानते। वअन्तकूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, तो हमें वो बात कहने का हक ही नहीं है जो हम अल्लाह तआला के बारे में जानते ही नहीं है। इससे फिर क्या पता चला कि हमको अल्लाह तआला के बारे में वही बात कहनी चाहिए जो हम जानते हों कुरान और हदीस से, कुरान और हदीस के जरिए से। तो हम अल्लाह तआला की तारीफ बयान कर ही नहीं सकते, हमारी जुबान आजिज और कासिर है, क्योंकि हम इदराक ही नहीं कर सकते अल्लाह तआला की जात का, उसकी जो सिफात हैं। लेकिन जो अल्लाह तआला ने बयान फरमाई हो, तो अल्लाह तआला को ऐसी सिफत के साथ मौसूफ करना जिसके साथ खुद उसने अपने आप को मौसूफ ना किया हो, उसके बारे में बगैर इल्म के बात करने से हमें बचना चाहिए। और ये अगर कुरान की रूह से हम देखें और नस से अगर हम देखें, तो ये इसको हराम करार दिया गया है। वैसे वो कुरान में फरमाया गया है सूरह इसरा आयत नंबर 36, वला तक्फू मा लैसा लक बिही इल्म इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइक काना अन्हु मसूला। बहुत ही खूबसूरत आयत है। वैसे हमारी रोजमर्रा जिंदगी के लिए भी ये बहुत बेहतरीन आयत है। जब हम इतना इन्वॉल्व होते हैं ना दूसरों की जिंदगियों में, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसका क्यों क्यों ऐसा हो गया, उसका फलां का क्यों ऐसा हो गया, ये सब चीजों से हम बच जाएंगे इस आयत को अगर हम समझ लें। कि अल्लाह ताला फरमाता है कि और जिस चीज का तुझे इल्म नहीं उसके पीछे मत पड़, यकीनन कान आंख और दिल उन तमाम के तमाम आज़ा से पूछ होनी है। तो अगर हम इन चीज़ों के साथ अल्लाह ताला के औसाफ बयान ना करें जिनके साथ खुद उसने अपने औसाफ बयान ना किए हों, मगर उन बातों के पीछे पड़े रहे जिनके बारे में हम ला इल्म है, तो इस तरह भी हम उन कामों में मुब्तला हो जाएंगे जो अल्लाह ताला ने मना किए हैं, यानी बेकार के काम या हराम काम हो जाएंगे वो। तो अल्लाह ताला के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं कहनी चाहिए, या हमें अपनी तरफ से नहीं कहना चाहिए। जैसे बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला को ये नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत अच्छा डॉक्टर है, नाउज़ुबिल्लाह। नहीं, ऐसे नहीं हम कह सकते, जिस क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने अपने लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया। और इसीलिए अल्लाह ताला के अच्छे नाम हैं, फदउहू बिहा, कि अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम है, तुम उनको उन्हीं नामों से पुकारो, अपनी तरफ से कोई नाम उसमें ऐड मत करो। तो अब ये चीज़ें हमें कुरान से मिल गई। अब जो अकली दलील है अल्लाह ताला की सिफात के बारे में, तो ये गैब में से है। जो मोतजली फ़िरका था जिन्होंने अल्लाह ताला की सिफात को नहीं माना, तो दरअसल ये लोग एतदाल से हट गए थे। मोतजल, एतदाल उसी को कहते हैं ना जो राह से हट जाना। इन लोगों ने क्या किया कि हर बात को अकल पर रखकर परखने की कोशिश की, अकल पर रखकर बात की। तो अब वो अकली दलील मांगते हैं हमसे कि अच्छा अकली दलील दो। तो अकल तो बहुत ही छोटी सी लिमिटेड है, अकल को तो अल्लाह ताला ने पैदा किया है, और अकल इंसान को गुमराह भी कर सकती है, अकल इंसान को किधर किधर भी डाइवर्ट कर सकती है। वो अय्यार भी है, चालाक भी है, और अपने आप को बचाने के लिए अकल बहुत सारे बहाने भी पेश करती है ना। तो अकल को, अकल से हम नहीं समझ सकते अल्लाह ताला की सिफात को। ये गैब के उमूर में से है, और इसका इदराक हमारे लिए नामुमकिन है। हम उस लेवल को पहुंच ही नहीं सकते, हमारी अकल उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकती जो अल्लाह ताला की सिफात हैं। तो फिर अकल से क्या दलील देंगे हम? तो हम कोई कैफियत उस वजह से नहीं, यानी हमारी अकल को सामने रखकर हम बात करेंगे, तो फिर तो अकल बहुत सारी चीजें हमसे मांगेंगी, और अकल लिमिटेड भी है, तो लिहाजा हम अकल से नहीं परख सकते। तो जो नुसूस की बात आई थी कि नुसूस क्या है, नस किसको कहते हैं, नून सुवाद नस, और उसकी जमा नुसूस है। तो नुसूस का मतलब होता है कि वो ओरिजिन या ओरिजिनल सोर्स जहां से वो बात निकली है। तो कुरान और हदीस में, एक्चुअली इस्लामी टर्म्स में आती है ये नुसूस, के नुसूस उनको कहते हैं जो कुरान से साबित हो और जो सही हदीस से साबित हो, ये नस या नुसूस हुए। ठीक है, अब इधर उधर से हम चीजें लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो तो चीजें जब हम गैर लोगों से या जो उससे रिलेटेड लोग नहीं है उनसे अगर हम लेंगे चीजें, ये मिसालें, तो वो तो हमको गुमराह भी कर देंगे, भटका भी देंगे। तो ओरिजिनल हमारा जो सोर्स है वो क्या है, कुरान और हदीस, सही हदीस। ठीक है, वहां से हम वो सोर्सेस से अगर हम ऑथेंटिसिटी लेंगे, उसी को नुसूस कहते हैं। ठीक है, तो बहरहाल, तो अकल की दलील हमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि अकल इंसान को गुमराह भी कर सकती है, और अकल लिमिटेड है, वो अल्लाह ताला की सिफात तक या उसकी जात तक पहुंच भी नहीं सकती। अब जैसे अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों को बयान किया गया है, उसका वस्फ बयान किया है ना, अब जो हमें जिक्र मिलता है कुरान में, अंगूर का जिक्र हम पढ़ते हैं, खजूर का जिक्र हम पढ़ते हैं, गलमान है, फल है, तख्त है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कुरान में पढ़ते हैं जो जन्नत में मिलेंगी। लेकिन उसकी जो हकीकत है वो हम उसका इदराक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दिखने में तो हमारी दुनिया की चीजों की जैसी हैं, लेकिन उसका जो मजा है या जो उसका उसकी जो हमेशा की रहने वाली जो सिफत है वो यहाँ की चीजों से हम उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। हमारी अकल इससे कासिर है, आजिज है कि हम कुरान में बयान करदा जन्नत की जो नेमतें हैं या हदीस सही हदीस से बयान करदा जो जन्नत की नेमतें हैं उसका हम इदराक कर सकें। हमारे इमेजिनेशन में तो आ सकती हैं लेकिन हम पहुंच नहीं सकते वहां तक। तो बहरहाल कुरान हमें कहता भी है, यानी सूरह सजदा आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बहुत ही खूबसूरत आयत है ये भी, फला तअलमु नफ्स मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाअ बिमा कानू यअमलून। सूरह सजदा आयत नंबर 17। कोई भी शख्स नहीं जानता जो आंखों की ठंडक उनके लिए छुपा कर रखी गई है, ये बदला है उनके नेक आमाल का। सुभान अल्लाह कि क्या कुछ उनके रब ने उनकी आंखों की ठंडक का सामान वहां मुहैया किया है, कोई जहन उसका इदराक नहीं कर सकता। और अल्लाह ताला ने कुरान में तो बयान किया ही, हदीस से भी पता चलता है कि हदीस कुदसी है, सही बुखारी और मुस्लिम ने मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जो न आंखों ने देखा न कानों ने सुना और ना ही किसी बंदे बशर के दिल में उसका ख्याल तक आया। सुभान अल्लाह। आप सोचें कि हमें कुरान में जन्नत की चीज़ों का जिक्र तो मिलता है कि वहाँ अंगूर होंगे, खजूर होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो कैसे होंगे हम नहीं जानते, उसका मज़ा कैसा होगा वो हम नहीं जानते। तो जब उस मखलूक के बारे में इंसानी जहन की बेबसी का ये आलम है कि उन सिफात का जो जिक्र किया गया है यहाँ पर उसके मानी और मफहूम या उसकी हकीकत को भी नहीं वो नहीं जानता, तो भला वो खालिक का इदराक क्यों कर सकता है? यानी जिस खालिक ने इन चीज़ों को पैदा किया है और इंसानी सोच और जहन इतनी लिमिटेड है कि वो उसकी पैदा की हुई चीज़ों को भी समझ नहीं पा रहा है या पाता है, तो वो खालिक का इदराक कैसे कर सकेगा भला? उसकी अकल कैसे वहां पहुंच सकेगी? और एक और मिसाल से बात समझ सकते हैं जो यहाँ दी गई है कि जैसे इंसान के जिस्म के अंदर रूह मौजूद है ना, मैं और आप अभी हम जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुन रहे हैं मैं बोल रही हूँ, अभी जिंदा है, रूह मौजूद है हमारे जिस्म में, तो तभी हम बोल पा रहे हैं है ना, और हर चीज का हम मुशाहिदा कर सकते हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम चल फिर रहे हैं, जो भी करते हैं रूह की वजह से कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इंसान के जिस्म से रूह निकल जाए, आप बताइए क्या वो चल सकता है? क्या वो देख सकता है? क्या वो सुन सकता है? जब रूह निकल जाती है तो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। लेकिन इस रूह के बारे में हमारी मालूमात कितनी है? कोई साइंस ऐसी है जिसने तरक्की की हो कि वो रूह के बारे में बता सके? आपको याद होगा यस अलूनक अनिर रूह, किसने सवाल किया था कि वो आपसे रूह के बारे में पूछते हैं? कह दो कि तुम्हें भी उसके बारे में कोई ज्यादा इल्म नहीं है, उसका इल्म दिया ही नहीं गया था तुमको। यहूद जानते थे जी, बारकल्लाहु फिकुम, जजाकल्लाहु खैरन, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके इल्म में और इजाफा करे, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। तो इवन यहूद भी, हालांकि वो अहले किताब में से थे, वो भी रूह के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, और वो इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि रूह के बारे में हमने सवाल किया है और रूह के बारे में कोई भी ज्यादा नहीं जानता, तो उसने उनको वही जवाब देने लगाया गया कि उनसे कह दो कि रूह के बारे में तुम भी कुछ ज्यादा नहीं जानते, इसका इल्म दिया ही नहीं गया ज्यादा किसी को, लोगों को। तो रूह जो हमारे जिस्म में, जो हमारे साथ साथ है, आप देखें हम जब चलते हैं तो रूह हमारे साथ होती है, हमारे हर रगो पैर में दौड़ रही है हमारी रूह, है ना, हमारी उंगलियों की हरकत, हमारे हर जिस्म की हर हरकत, हमारे जिस्म में खून का दौड़ना, ये क्या है? वो रूह का मौजूद होना है ना, है कि नहीं? लेकिन क्या मैं और आप या कोई भी साइंसदान, कोई रिसर्चर, कोई डॉक्टर रूह के बारे में कुछ बता सकते हैं कि क्या है ये रूह, बताइए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया था कि इंसान देखता है कि उसकी, यानी जब रूह कब्ज कर ली जाती है तो आंखें उसका ताकुब करती हैं, है ना? कौन से सहाबी का इंतकाल हुआ था जब रसूलुल्लाह ने ये बात फरमाई थी, कोई बता सकता है? कोई क्विज, जिन्होंने सहाबियात का, कौन से सहाबी की डेथ हुई थी? अबू सलमा की ताजियत के लिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमा के पास गए तो उनकी आंखें खुली रह गई थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बहुत दो तीन बातें वहां बताई अच्छे से, और कहा कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसकी आंखें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो रूह है, आंखें उस रूह का पीछा करती हैं, यानी रूह का मुशाहिदा करना चाहती हैं आंखें, लेकिन वो रूह तो निकल कर चली भी जाती है। तो ये जो रूह है, इसकी हकीकत क्या है? अगर उसे हमारे जिस्म से निकाल दिया जाए तो हम एक बिल्कुल बेहिस्सो हरकत, एक जुस्सा बनकर रह जाएं। जब तक ये रूह हमारे अंदर मौजूद है तो उस वक्त हमको अकल, समझ, बूझ सब कुछ समझ में आता है, यह सोचने समझने के काबिल रहता है। लेकिन अगर ये रूह ही ना रहे तो क्या रहेगा हमारे अंदर? तो जब रूह इंसान के अंदर से निकल जाती है तो बिल्कुल वो मुर्दा बेजिस्म जान हो जाता है, और इसी वजह से मरते वक्त उसकी आंखें खुली रहती हैं, क्योंकि रूह का मुशाहिदा करती हैं आंखें। बाद में कफन में लपेट कर उसको उठा लिया जाता है, दफन कर दिया जाता है। तो अब आप देखें कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान रूह के बारे में कुछ नहीं कह सकता, कुछ बता नहीं सकता। तो फिर आप बताइए कि इंसान की जहन, उसकी अकल, उसकी सोच कितनी लिमिटेड है? तो क्या हमारी सोच, हमारा जहन, हमारी अकल अल्लाह ताला की सिफात या उसके वजूद का इदराक कर सकती हैं? नहीं कर सकती। हम तो सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। बस ये कि अल्लाह ताला ही ने जो बात हमें बताई हो वही बात है, और उसको उतना ही हमें समझना चाहिए जितनी अल्लाह ताला ने बात बताई हो, उससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है करने की। तो बहरहाल ये चीज़ उम्मीद समझ में आई होगी आपको। तो अल्लाह ताला का वस्फ हम बयान नहीं कर सकते जो अल्लाह ताला ने बयान ना किया हो। हमें वही अल्लाह ताला की सिफात बयान करनी है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान में और हदीस में बताई हो। और ये हमें इसकी दलाइल समाई भी मिलते हैं और अकली भी। हमने ऊपर दो आयतें पढ़ी जो हमने सुनी और पढ़ी, और अकल तो हमारी इससे बिल्कुल मुआवरा है। अकल तो बता ही नहीं सकती इसके बारे में, क्योंकि ये गैब की बातों में से, हमारी अकल वहां तक, गैब तक पहुंच ही नहीं सकती। ये गैब का पर्दा उसी वक्त खुलेगा जब कयामत आएगी। तो हमारी अकल को वहां तक के उसका इदराक करना नामुमकिन है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किताब और सुन्नत में, यानी सही हदीस से, कुरान से जो हमें दलीलें मिलती हैं, जो नसूस जाहिर होते हैं, उस पर ईमान लाना, उसको कबूल करना हमारे लिए वाजिब है। हम उससे तजावुज़ नहीं कर सकते, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। मिसाल के तौर पर, जब अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के बारे में ये बता दिया कि उसकी आँख है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आँख से मुराद रोयत है, यानी देखना है, ना कि ऐन आँख है? अगर हम ये कहेंगे तो हम अल्लाह ताला के वस्फ को उस तरह से बयान नहीं कर रहे जिस तरह से उसने खुद अपना वस्फ बयान किया है। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसकी आँख है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आँख से मुराद नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला की कोई आँख नहीं, बल्कि सिर्फ उसका देखना मुराद है। जब अल्लाह ताला ने अपना वस्फ बयान कर दिया कि उसके दो हाथ हैं, कुरान हमें बताता है बल यदाहु मबसूततान, सूरह मायदा आयत नंबर 64, कि बल्कि उसके दोनों हाथ खुले हैं। तो क्या मैं और आप भला ये कह सकते हैं कि इससे मुराद हकीकतन अल्लाह ताला का हाथ नहीं बल्कि उसकी नेमतें हैं? तो क्या ये अल्लाह ताला की सिफात में तजावुज़ करना नहीं हुआ? भला हम ये कैसे, कि हमको किसने इजाजत दी इसको एक्सप्लेन करने की कि नौज़ बिल्लाह अल्लाह ताला के हाथ से मुराद हाथ नहीं बल्कि उसकी नेमतें हैं? तो ये तो क्या हो गया, अल्लाह ताला की सिफात के साथ हमने तजावुज़ कर लिया है ना। क्या भला मैं और आप कह सकते हैं ऐसा? नहीं कह सकते। तो इसीलिए अल्लाह ताला की जो सिफात हैं, उस पर उसके औसाफ के साथ, उसकी सिफात के साथ ईमान लाना ज़रूरी है। और फिर ये बात भी मैं और आप जानते हैं, उसको हम अगली दफ़ा पढ़ेंगे, कि अल्लाह ताला की जो सिफात हैं, जो उसकी ज़ात है, तो वो दो है, सिफात मानविया और सिफात खबरिया। इंशाल्लाह हम उसको अगले हफ्ते पढ़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इतना आप लोगों ने समझ लिया कि अल्लाह ताला की सिफात क्या हैं और उसको हम कैसे जान सकते हैं, और क्या हम उसको अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर सकते हैं या अपनी अक्ल के ज़रिए उसको परख सकते हैं? तो हम ऐसा नहीं कर सकते। उसको हम उसी तरह समझेंगे जो नुसूस से साबित है, जो कुरान से साबित है, जो हदीस से साबित है। हम खुद से, हम इंसान उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। क्या भला इंसान अल्लाह ताला की ज़ात का एक्सप्लेनेशन दे सकता है? भला आप बताइए, अपने खालिक का, अपने मालिक का, जिसने उसे पैदा किया, जिस मालिक ने उस इंसान को पैदा किया और जिसने उस इंसान को अक़ल दी, तो वो अक़ल तो बहुत ही लिमिटेड है, तो वो अपने खालिक के बारे में भला कैसे बता सकेगा? है ना, बता सकते हैं हम लोग? है हमारे अंदर इतनी ताकत या बसीरत? नहीं बता सकते जी, बिल्कुल। तो लिहाजा हमको उसको एज इट इज़ मानना है, जैसे कुरान और हदीस से साबित है। हम अपनी तरफ से उसमें कमी बेशी या ज्यादती नहीं कर सकते, जैसे कि जहमिया फ़िरके ने किया था या मुतज़िला फ़िरके ने किया था। हम ऐसा नहीं कर सकते जी। अब बताइए, आपको कुछ सवाल है आपके, तो चाहे तो आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला की सिफात पर एज इट इज़ ईमान लाने वाला बनाए, जैसे उसने खुद अपने बारे में قرآن اور صحیح حدیث میں بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ کرے، ہمیں ہر طرح کے شر فتنے سے اور ڈائیورجن سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے تو اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا. اللہم لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.